रात के 12 बज रहे थे। एक बड़े से खुले मैदान में बड़ा सा एलईडी टीवी लगा हुआ था, जिसके सामने 2 से 3 चारपाइयां लगी हुई थीं। सामने लगी चारपाई पर एक आदमी बैठा था, जबकि उसके पास में लगी 2 चारपाई पर 3-3 आदमी इकट्ठा होकर बैठे थे। वहां और भी लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ नीचे बैठे थे तो कुछ उनके आसपास खड़े थे। टीवी स्क्रीन पर यशवर्धन का इंटरव्यू चल रहा था। उन सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर ही गड़ी हुई थीं। सबके हाथों में शराब के ग्लास थे। यशवर्धन के इंटरव्यू का न्यूज 24/7 इंडिया पर रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। कसा वाटला भाव, उनमें से एक आदमी ने पूछा। उसके पूछने के साथ ही सबकी नजरें उस आदमी पर टिक गईं, जो कि चारपाई पर अकेला बैठा था। उसने अपने ग्लास से सारी शराब एक ही घूंट में कटक ली। उसके चेहरे का रंग गेरुआ था और आंखें लाल हो रखी थीं। माथे पर लाल टीका लगा रखा था। हल्की दाढ़ी के साथ गहरी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए वो खड़ा हुआ। उसके खड़े होने के साथ ही उसके आसपास के बैठे हुए सभी लोग खड़े हो गए। काय झाला भाऊ, एक आदमी ने उसके पास आकर कहा। अरे पूछना का है, हम तो पहले ही बोले थे कि ये मनहूस का इंटरव्यू देखने के लिए काहे इतना खर्चा किया, अब हो ही गए ना भैडा जी नाराज, वहां मौजूद दूसरे आदमी ने बिहारी एक्सेंट में कहा। उसकी आवाज सुनकर आदमी उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर उसके कंधों को मजबूती से पकड़कर उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, काय लागत है लल्लनवा, ई के इंटरव्यू का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊ काहे ना तो हर भैया जी इतने कमजोर नहीं है। अपनी बात खत्म करके उसने तिरछी मुस्कुराहट दी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर वहां मौजूद लोग कहकहे लगाकर हंसने लगे। लल्लन, जिसे पकड़कर थोड़ी देर पहले उसने जवाब दिया था, उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा, इतने सालों में हम तुझे मराठी नहीं सिखा पाए, लेकिन इसने भैया जी को बिहारी बखूबी सिखा दी, क्या कहते हो लल्लन? वो तुम बिल्कुल लल्लन टॉप। हाँ तो इमें दुराई का है, भैया जी जब हमारी भाषा बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कानों में किसी ने मिश्री घोल दी हो, उसने जवाब दिया। वहां मौजूद सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे, तभी उस आदमी ने अपना हाथ ऊपर किया और सबको चुप रहने का इशारा किया। इसी के साथ वहां पर शांति छा गई। सबके चुप होते ही उसने अपने कड़क और भारी आवाज में कहा, इंटरव्यू तो काफी कड़क था, खूब छाना है। और इंटरव्यू लेने वाली भाऊ, वहां मौजूद आदमियों में से किसी ने पूछा। धत, चलो अब मस्ती बहुत हो गया है, काम की बात पर आते हैं। यशवर्धन का इंटरव्यू तो काफी अच्छे से हो गया, लेकिन अब हमारी बारी है। जब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो यही लड़की हमारा इंटरव्यू लेगी, बोलते हुए उसने कुछ सोचा और उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, वैसे मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, इंटरव्यू चाहे पहले दे या बाद में, ऐसा करो कि लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाओ, आने के लिए तैयार हो जाए तो अच्छी बात है, वरना पता है ना क्या करना है। करना का है भैया जी, धर लेंगे, लल्लन ने जवाब में कहा। काफी तेज हो रहे हो लल्लनवा, कह रहे हैं बहुत आगे तक जाओगे तुम, उस आदमी ने जवाब दिया। उन लोगों की बातचीत वहीं खत्म हो चुकी थी। जाने से पहले वो सब एक ही मारा लगा रहे थे, हमारा नेता कैसा हो, राघवेंद्र प्रताप जैसा हो। वहां मौजूद आदमी कोई और नहीं बल्कि राघवेंद्र प्रताप सिंह था। यशवर्धन की पार्टी से निकलने के बाद वैदेही देव के साथ ऑफिस आ चुकी थी, जहां कुछ ही देर बाद उसका लाइव शो शुरू होने वाला था। रास्ते में दोनों ने काफी बातें की और यशवर्धन के दिए हुए खाने को भी एंजॉय किया। वैदेही के शो का शूट लगभग 10:30 बजे तक खत्म हो चुका था। शूट खत्म होते ही प्रतीक ने देव और वैदेही को अपने केबिन में बुलाया था। मैं तो कहता हूँ कि तुम क्राइम कवरेज के साथ साथ लाइव इंटरव्यू लेने भी शुरू कर दो, आज हमारे चैनल ने छप्पर फाटिया पीकी है, प्रतीक ने उनके आते ही कहा। हाँ, अब यही बाकी रह गया, मुझे लगा था कि आपने भी बाकियों की तरह मुझे डांटने के लिए बुलाया होगा कि मैं लाइव इंटरव्यू के दौरान उससे क्या कुछ पूछे जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पहले ही पता था कि तुम किस पर्पस से उसका इंटरव्यू लेने जा रही थी, प्रतीक ने जवाब दिया। लेकिन वो पर्पस कहाँ हो पाया सर, वैदेही मैम ने उसे सच उगलवाने की इतनी कोशिश की, लेकिन वो तो पता नहीं क्या खाकर बैठा था जो मुँह खोलने को तैयार ही नहीं था, देव ने निराश होकर कहा। ये लो, हमेशा की तरह कोई काम थोड़ा सा भी फेल हुआ नहीं और इसकी शक्ल पर 12 बज गए। फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखो देव बाबू, और कुछ सीखो अपनी वैदेही मैम से। प्रतीक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हाँ, मुझे इसका कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, तो तुम मुझसे सीख सकते हो। अच्छा सर, आपने हमें क्यों बुलाया था, देव ने पूछा। हाँ, तो तुम दोनों जिस केस पर काम कर रहे थे वो एरिया निकोला जिला के अंदर आता है, वहाँ की तहसील हाफुस और उसके आसपास के गाँव और तहसीलों से अक्सर लड़कियों के गायब होने की खबरें आती रहती हैं। मतलब आप भी इसी केस की स्टडी कर रहे थे, देव ने पूछा। प्रतीक ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ मैं देख रहा था कि वो जिला कौन से विधायक के अंडर में आता है, महाराष्ट्र विकास पार्टी के ही नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह, देव ने गूगल करके जवाब दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन तक इन सब की खबर ना पहुंची हो, या उनके एरिया में इस तरह खुलेआम हो रहे क्राइम से वो अनजान हो, वैदेही ने जवाब दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हाफुस का रहने वाला है, देव अपने मोबाइल में राघवेंद्र प्रताप सिंह की पूरी कुंडली निकाल कर बैठा था। इसके लिए तो हमें राघवेंद्र प्रताप सिंह से बात करनी होगी, जैसे ही वैदेही ने कहा देव ने तुरंत बोला, और यशवर्धन सिंह इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनके कारनामे भी एक दूसरे से कहाँ छुपे होंगे, वैदेही क्यों ना तुम यशवर्धन की तरह उसका भी एक इंटरव्यू लो, प्रतीक ने सुझाव दिया। वैदेही ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब में कहा, लेकिन राघवेंद्र सिंह हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएगा क्या, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, प्रतीक ने आश्वासन देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसका इंटरव्यू उसी के गांव में हो, इसी बहाने हमें वहां पहले जाने का मौका मिल जाएगा और लौटते वक्त भी हम वहां पर रहकर थोड़ी बहुत पूछताछ कर सकते हैं। अगर मामला गंभीर लगा तो चीजों को कैसे हैंडल करना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे तो वैदेही को इंटरव्यू लेना पसंद नहीं था, लेकिन इस बार उसने बिना नानुकुर की हाँ कह दी थी। सारी बातें फाइनल होने के बाद देव और वैदेही अपने अपने घर पर निकल चुके थे। इन सब के बीच वैदेही को एक बार भी अपने मोबाइल का ख्याल नहीं आया। वैदेही घर पहुंची तो वहां पर नरगिस उसका इंतजार कर रही थी। उसके बीच पार्टी में आने की वजह से वो उससे थोड़ा नाराज थी। कभी तो खुद को टाइम दिया करो, नरगिस ने उसे डांटते हुए बोला। मेरा छोड़ो, तुम्हारी दिली ख्वाहिश आज पूरी हो गई। अच्छा बताओ ना, पार्टी कैसी थी? वैदेही ने उसका ध्यान भटकाने के लिए बात को बदला। बस ठीक ठाक सी ही थी। तुम लोगों के जाने के बाद यष्टी भी ज्यादा नहीं रुके और फिर मैं भी वहां से निकल आई थी। मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए थे लेकिन तुमने एक भी कॉल पिक करना जरूरी नहीं समझा। जैसे ही नरगिस ने कॉल की, वैदेही को अपने मोबाइल का ख्याल आया। उसने जल्दी से अपना पर्स टटोला लेकिन उसमें उसका मोबाइल नहीं था। उसने अपना सिर पकड़ कर कहा, लगता है आज फिर मैं अपना फोन देव के पास ही भूल गई। ये लड़का कितना भुलक्कड़ है, लोग यहाँ अपने मोबाइल के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते और मुझे अक्सर बिना मोबाइल के रहना पड़ता है। कोई नहीं, सुबह ले लेना। कौन सा तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कॉल आ रही है? नरगिस ने उसे परेशान करने के लिए कहा। जवाब में वैदेही ने मुंह बना दिया।
फिर भी एक बार कॉल करके बोल देती हूँ ताकि कल ऑफिस आते वक्त मोबाइल साथ लेकर आए। पता चला कि वो कल भीम अपने घर पर भूल गया तो फिर मुझे एक दिन बिना फोन के रहना होगा, वैदेही ने कहा और कॉल करने के लिए नरगिस का मोबाइल मांगा। वैदेही ने देव को कॉल किया। क्या हुआ वैदेही मैम, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? उसने कॉल उठते ही पूछा। काम के बच्चे, मेरा मोबाइल तुम फिर देना भूल गए, वैदेही ने कहा। लेकिन मैम, आपका मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैंने तो आपको यशवर्धन सिंह के घर पर ही उसे लौटा दिया था, जैसे ही देव ने कहा। वैदेही ने उसके आगे की बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। वो हड़बड़ाकर अपने कमरे में भागी और जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला। उसे भागता देखकर नरगिस परेशान हो गई, वो भी उसके पीछे दौड़ कर गई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नरगिस ने देखा तो वैदेही लैपटॉप में लगी हुई थी। कुछ ठीक नहीं है नरगिस, मेरा फोन देव के पास नहीं है और ये एक अच्छी खबर नहीं है। जानती हो ना मेरे फोन में क्या कुछ नहीं होता, पता नहीं ये उसकी लापरवाही का नतीजा है या मेरी ही। और तुम अपना मोबाइल ढूंढने के बजाय इस लैपटॉप में क्या कर रही हो? अपने मोबाइल की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, ये लो मिल गई, कहते हुए वैदेही के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने देखा कि उसका मोबाइल यशवर्धन सिंह के घर पर मौजूद था। मुझे अभी इसी वक्त अपना फोन चाहिए, बोलते हुए वैदेही वहां से बाहर जाने लगी। नरगिस भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रही थी। उसने उसे रोकते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या, रात के 12 बज रहे हैं, अब तक तो वो सो भी गया होगा, इस वक्त तुम ऐसे हाल में वहां जाओगी क्या? अपने फोन में मौजूद चीजों को बचाने के लिए तो इस वक्त तो मुझे उड़कर दूसरे देश भी जाना होता तो मुझे मंजूर होता, वैदेही ने कहा और अपनी कार की चाबी उठाकर यशवर्धन के घर जाने के लिए निकल पड़ी। नरगिस ने उसके साथ जाने की जिद की लेकिन वैदेही उसे वहीं छोड़कर अपना मोबाइल लेने यशवर्धन के बंगले की तरफ निकल चुकी थी।